नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, हमें विश्वास है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हो और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, आप सबको प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। आइए हम सब आज के अध्ययन से पूर्व परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबको फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपने बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दें ताकि जब हम आपके वचन को सुने, समझें और सीखें तो प्रभु ये वचन हमारे हृदयों में कार्य करने पाए। प्रत्येक भाई बहन पर अपना अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, हम इन दिनों व्यवस्था विवरण की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर उन्हें आज्ञा पालन के फल स्वरूप हर प्रकार की आशीष की प्रतिज्ञा देता है। किन्हें? इसराइलियों को। यहाँ तक कि भूमि को भी वह उनके और उनके मवेशियों के लिए भी फलवंत बनाएगा। वह उनसे अधिक शक्तिशाली जातियों को वहां से हटा देगा। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसके 22 पद को पढ़ें। लिखा है, इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ भूमि पर अधिकार करने के महान सिद्धांत दिए गए हैं और आगे हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 11 उसके 23 से 25 पद में लिखा हुआ है, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थ्य जातियों के अधिकारी हो जाओगे। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक और परात नाम महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारा सिवाना होगा। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। मित्रों, यहाँ आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि भूमि भी परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर ने उन्हें ऐसा विशाल भूभाग दिया जैसा उन्होंने कभी नहीं पाया था। जंगल से जहाँ से वे चलकर आए थे लबानोन तक और परात नदी से लेकर दक्षिण के समुद्र तक, यह लगभग 3 लाख वर्ग मील का क्षेत्र है, परंतु उन्होंने 3 लाख वर्ग मील से अधिक क्षेत्र पर कभी अधिकार नहीं किया। दाऊद और सुलेमान के युग में जब राष्ट्र अपनी चरम सीमा पर था तब भी उनका क्षेत्रफल वही था। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने तो उन्हें वह संपूर्ण भूभाग दे दिया था परंतु वे ही उस पर अधिकार करने से चूक गए थे और उसका आनंद न ले पाए। परमेश्वर ने यहोशू से भी यही कहा था कि संपूर्ण क्षेत्र उनके सामने है और वह पूरा का पूरा इसराइल के लिए है, परंतु परमेश्वर ने कहा था कि उन्हें उस पर चलना होगा, उन्हें उस पर अधिकार करना था। आज विश्वासियों में ऐसा अंतर क्यों है? कुछ विश्वासी एक ओर बैठे हैं और आत्मिक गरीब रेखा पर हैं, जबकि अन्य विश्वासी आत्मिक समृद्धि के वारिस हैं। परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि उसने सब विश्वासियों को स्वर्गीय आशीषों से मालामाल किया हुआ है। कुछ विश्वासी उन आशीषों को अपना लेते हैं और कुछ नहीं अपनाते हैं। कुछ विश्वासी उनका आनंद लेते हैं और कुछ नहीं ले पाते हैं। यह केवल हमें प्राप्त आशीषों को ग्रहण करने की बात है। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11 अध्याय उसके 26 पद में लिखा हुआ है, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। इसराइल की आज्ञा पालन का आदेश था, आज्ञा पालन ही मुख्य विषय था। तब हम आगे व्यवस्था विवरण 11 उसके 27 में पढ़ते हैं, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। मित्रों ध्यान दीजिए कि आज आज्ञा पालन को एक ओर कर दिया गया है और मैं परमेश्वर के अनुग्रह में भी विश्वास करता हूँ। मैं परमेश्वर के अनुग्रह का ही प्रचार करता हूँ। हम अनुग्रह द्वारा बचाए गए हैं, हम अनुग्रह द्वारा सुरक्षित हैं, हम अनुग्रह द्वारा ही उन्नति करते हैं और हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हम वहां 10,000 वर्ष रहेंगे जो परमेश्वर के अनुग्रह से ही होगा। परंतु मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को अनदेखा करेंगे तो आप आज बड़ी बड़ी आत्मिक आशीषों से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे मित्रों, आज्ञाकारिता परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत अद्भुत महिमामय संबंध बनाती है। तब हम आगे भी देखते हैं कि इसका विपरीत भी अति सत्य है, अवज्ञा अर्थात श्राप लाती है। आज्ञा नहीं मानने से श्राप आता है। हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक 11 अध्याय उसके 28 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तजकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो तो तुम पर श्राप पड़ेगा। आपने ध्यान दिया होगा कि परमेश्वर बार बार जिस महत्वपूर्ण विषय पर इसराइल से आग्रह कर रहा है वह है मूर्ति पूजा। मित्रों, यह एक अवश्यंभावी भय था कि इसराइल अपने परमेश्वर यहोवा का त्याग करके मूर्ति पूजा करेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 11 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 12 से जारी रखेंगे। इसका विषय हम इस प्रकार से पाते हैं, उस देश में इसराइल के पास एक ही आराधनालय अर्थात आराधना स्थल होगा। इसराइल के इतिहास में आगे चलकर परमेश्वर ने यरूशलेम को चुना कि वहां मंदिर बनवाए। इसराइल को परमेश्वर की आराधना के लिए वहां जाना होगा। परमेश्वर ने आराधना के अलग अलग स्थान क्यों नहीं बनाए? मेरे विचार में इसका कारण स्पष्ट है। उस देश में मूर्ति पूजा प्रचलित थी जिनको ध्वंस करके अर्थात करने की आज्ञा परमेश्वर ने उन्हें दी थी। अब क्योंकि उन्होंने उनकी वेदियां नहीं गिराई थी इसलिए उन्हें आज्ञा दी गई थी कि एक स्थान पर एकत्र होकर आराधना करें। इस प्रकार उनकी आराधना में एकता थी और वे राष्ट्र रूप में संगठित भी हुए। जब वे पर्व के लिए यरूशलेम जाते थे तब वे सब एकजुट होते थे। मेरे मित्रों, आज हमें परमेश्वर की आराधना के लिए केंद्रीय स्थान पर एकत्र होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु ने इसका कारण स्पष्ट किया है जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 21 से 24 पद में पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मेरे प्रिय मित्रों, आज विश्वासी एक केंद्र स्थल में आराधना के लिए एकत्र नहीं होते हैं। हम एक व्यक्ति के साथ आराधना करते हैं और वह है प्रभु यीशु। आज यही एक महत्वपूर्ण बात मन में रखना आवश्यक है। हमारे आराधनालय का नाम कोई महत्व नहीं रखता। आपकी कलीसियाई वर्ग भी कोई महत्व नहीं रखता। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या आप प्रभु यीशु के पास एकत्र होते हैं? अब मेरे मित्रों, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह मूर्ति पूजा है, क्योंकि आपका लक्ष्य यीशु का स्थान ले लेता है। यदि आप मनोरंजन और सामाजिक समागमन के लिए एकत्र होते हैं तो वह भी मूर्ति पूजा है। हमें एक आत्मा होने के लिए जिस बल की आवश्यकता है वह है प्रभु यीशु। यह कैसी ही महत्वपूर्ण बात है। संपूर्ण देश में केवल एक ही आराधना स्थल है। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 12 अध्याय उसके 4 पद में अब हम पढ़ते हैं, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी करना। जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे उनके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों व टीलों पर व किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाएं। फिर जैसा वे करते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा न करना। मेरे मित्रों यहां पर ध्यान दीजिए कि न्यायियों के युग में इसराइल को बार बार परमेश्वर दंड देता था। क्यों, क्या कारण था? एकमात्र कारण यही था कि वे मूर्ति पूजा करने लगते थे। महान भविष्यवक्ता एलिय्याह ने संदेश मुख्यतः मूर्ति पूजा के विरोध में ही दिए थे। बेबीलोन के दासत्व में जाने का मुख्य कारण क्या था? मूर्ति पूजा। पुराने नियम की अंतिम पुस्तक में जो चेतावनी दी गई है वह मूर्ति पूजा के विरोध ही थी। अब हमें कहीं यह भ्रम न हो कि हम मूर्ति पूजा से बचे हुए हैं। मेरे मित्रों हम सोचते हैं कि आज हम अंधविश्वासी नहीं हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। क्या हमें पूरा विश्वास है? सत्य तो यह है कि हमारे और परमेश्वर के बीच आने वाली प्रत्येक वस्तु मूर्ति है। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जो कलीसिया की सहभागिता में बड़ा हुआ और बड़ा अच्छा विश्वासी था। कुछ समय बाद उसकी योग्यता के कारण उसे बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और वह उन्नति करता गया। वह जितनी अधिक उन्नति करता था उतना ही अधिक वह परमेश्वर से दूर होता जाता था। और आज स्थिति यह है कि उसकी नौकरी उसके जीवन में पहला स्थान रखती है। एक बार मैं उसके शहर में सभा करने गया। उसने मेरी पत्नी और मुझे भोज पर आमंत्रित किया क्योंकि वह हमें पहले से जानता था। उसने मुझसे स्पष्ट कह दिया कि वह काम की व्यवस्था के कारण सभा में उपस्थित नहीं हो पाएगा। उसके लिए उसका कारोबार, उसका पद, उसकी उन्नति मूर्तियां बन गई थी, अर्थात मूर्तियां दी जिनकी वह उपासना करता था। और जहां तक आराधना का प्रश्न है वह सप्ताह के 7 दिन उनके सामने घुटने टेकता था। आपके और आपके परमेश्वर के मध्य आने वाली प्रत्येक वस्तु आपकी मूर्ति है। मेरे मित्र मैं नहीं जानता कि आपकी मूर्ति क्या है लेकिन आप जानते हैं और आज उस पर आप अवश्य विचार करें। हम व्यवस्था विवरण 12 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे और उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। ध्यान दीजिए, अंतः निश्चित स्थान यरूशलेम था, परंतु यरूशलेम से पूर्व भी इसराइल को एक निश्चित स्थान पर ही आराधना के लिए एकत्र होना था। उनकी होम बलि, बलिदान, दशमांश, मन्नतों के लिए भी एक ही स्थान निश्चित था। भोज्य उत्पादों का दशमांश जो वे परमेश्वर को चढ़ाते थे वह भी उन्हें उस एकमात्र निश्चित स्थान में ही खाना आवश्यक था। मित्रों हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 12 अध्याय के 15 और 16 पद में, परंतु तू अपने सब फाटकों के भीतर अपने जी की इच्छा और अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशीष के अनुसार पशु मार के खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध मनुष्य दोनों खा सकेंगे, जैसे कि चिकारे और हरिन का मांस, परंतु उसका लोहू ना खाना, उसे जल की नाय भूमि पर उंडेल देना। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो भोजन वे घर में खाते थे वह आराधना का भाग नहीं परंतु उनके लिए भोजन के भी नियम थे। अध्याय 14 में अशुद्ध और शुद्ध पशुओं की लंबी सूची है। हम देखते हैं कि घर में खाना खाने के लिए उन्हें विधिवत शोधन की आवश्यकता नहीं थी, परंतु बलि के पशुओं की अपेक्षा वे किसी भी पशु को खा सकते थे जब तक कि वह शुद्ध पशु हो, परंतु अनिवार्य यह था कि वे लहू को पूर्ण रूप से निकाल दें। इसके विपरीत परमेश्वर को चढ़ाई जाने वाली भेंट परमेश्वर द्वारा निश्चित एक ही स्थान में आकर खाना आवश्यक था। हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक के 12 अध्याय और उसके 21 से 25 पद में पढ़ते हैं, जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन ले, वह यदि तुझ से बहुत दूर हो, तो जो गाय बैल भेड़ बकरी यहोवा ने तुझे दी है उनमें से कुछ तेरा जी चाहे उसे मेरी आज्ञा के अनुसार मार के अपने फाटकों के भीतर खा सकेगा। जैसे चिकारे और हरिन का मांस खाया जाता है वैसे ही उनको भी खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य उनका मांस खा सकेंगे, परंतु उनका लोहू किसी भांति न खाना, क्योंकि लोहू जो है वह प्राण ही है, और तू मांस के साथ प्राण कभी भी न खाना, उसको न खाना, उसे जल की नाई भूमि पर उंडेल देना। तू उसे न खाना इसलिए कि वह काम करने से जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी भला हो। मेरे मित्रों, लय व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 17 में जब इसराइल जंगल में था तब उनके लिए यह निर्देश था कि वे जब भी बछड़ा मेमना या बकरा वध करें तो उन्हें वह पशु मिलाप वाले तंबू के द्वार पर लाना होता था। याजक उसका लहू वेदी पर छिड़कता था और उसकी चर्बी परमेश्वर को सुगंध रूप में चढ़ाया जाता था। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी कि वे शैतान को भेंट न चढ़ाएं। प्रतिज्ञा के देश में बस जाने के बाद अनेक इसराइली यरूशलेम से बहुत दूर वास करते रहे होंगे, और हर समय जब वे भोजन के लिए किसी पशु का वध करेंगे तो यरूशलेम आना संभव नहीं होगा। अतः परमेश्वर ने उन्हें निर्देश दिया कि वे घर पर पशु का वध करके उसे लहू बहा देते और उसे खा सकते थे। लहू जीवन का प्रतीक है, इस कारण धर्मशास्त्र में मसीह यीशु के लहू पर इतना अधिक बल दिया गया है। हम आगे देखते हैं व्यवस्था विवरण 12 अध्याय उसके 29 से 31 पद में। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे और तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि उनके सत्यानाश होने के बाद तू भी उनकी नाई फंस जाए। अर्थात यह कहकर उनके देवताओं के संबंध में यह पूछताछ न करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे, मैं भी वैसी ही करूंगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है, यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। मेरे मित्रों, उन्हें बार बार निर्देश दिया गया कि वे उस देश के सब वासियों को समाप्त कर डालें, जिससे कि वे उनके द्वारा परीक्षा में ना पड़ें। वे बाल के उपासक थे और जैसा अन्य जातियों में प्रायः होता है वे अपने बच्चों को मूर्तियों की भेंट चढ़ाते थे। वे मूर्तियों को आग में जलाकर लाल करते थे और फिर अपने शिशु अर्थात उसकी बाहों में रख देते थे। इससे अधिक पार्श्विक व्यवहार की कल्पना मैं तो नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा कि ऐसा व्यवहार उसके समक्ष घृणित है। मेरी मनोकामना है कि मैं उन सब बातों से घृणा करूं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, और उन सब बातों से लगाव अर्थात प्रेम रखूं जो परमेश्वर को भाती है अर्थात पसंद है। व्यवस्था विवरण 12 उसके 32 पद में लिखा है, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और न तो कुछ उनमें बढ़ाना और न उनमें से कुछ घटाना। मेरे मित्रों, उन्हें परमेश्वर द्वारा दी गई इन आज्ञाओं पर ध्यान देना है। यदि वे परमेश्वर की आज्ञाओं की अवज्ञा करेंगे अर्थात नहीं मानेंगे तो परमेश्वर उनके साथ अन्य जातियों का सा ही व्यवहार करेगा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। मैं कभी समझ नहीं पाया हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि वे उन बातों में बच जाएंगे जिनमें अन्य जन या अन्य लोग नहीं बच पाते हैं। पाप तो पाप ही है। यदि इसराइल परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानेगा तो बचेगा भी नहीं। अतः उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन निश्चय ही करें। मेरे मित्रों, आज मेरे लिए और आपके लिए भी एक शिक्षा है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। यहाँ पर अध्याय 12 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 13 से आरंभ करते हैं। विषय है झूठे भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध चेतावनी और उनको परखने की विधि। मेरे मित्रों, यह अध्याय अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे देवी देवताओं के विषय में निर्देश दिए गए हैं। अध्याय 18 में हम झूठे भविष्यवक्ता को पहचानने के परीक्षण को देखेंगे। इसराइल को झूठे भविष्यवक्ता पहचानने में कठिनाई नहीं थी क्योंकि उनके पास धर्मशास्त्र में परमेश्वर प्रदत्त परीक्षण विद्यमान थे जिनके द्वारा झूठे भविष्यवक्ता का आसानी से पकड़े जाना संभव था। मेरे मित्रों, इस अध्याय में परमेश्वर के जनों को पथ भ्रष्ट करने के लिए झूठा धर्म प्रवेश करवाने वालों के साथ क्या किया गया है वह दिया गया है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 13 अध्याय उसके 1-4 पद में हम पढ़ते हैं, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह व चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह व चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं वा नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उनकी सेवा करना और उसी में लिपटे रहना। मेरे मित्रों, यह आज के युग में प्रासंगिक है। मुझसे प्रायः पूछा जाता है कि मैं झूठे भविष्यवक्ताओं की परिभाषा कैसे दूंगा, या वे मुझसे पूछते हैं कि सभा में चंगाई कैसे होती है। मैं इसकी व्याख्या नहीं देता हूं और मेरे विचार में अनेक स्थितियों में तो यह प्राकृतिक क्रिया है, परंतु यदि अलौकिक भी हो तो परमेश्वर चेतावनी देता है कि झूठे भविष्यवक्ता भी यह काम कर सकते हैं। मेरे मित्रों, हमारे लिए इसे ध्यान में रखना अच्छा होगा। परमेश्वर कहता है कि जब कोई झूठा भविष्यवक्ता आकर ऐसा चिन्ह दिखाए जो पूरा हो तो हमें उस पर तभी विश्वास करना है जब वह मसीही विश्वास के सत्य का अंगीकार करे, उसका इनकार न करे। यह एक महान सिद्धांत है जो यहाँ दिया गया है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो मेरे लिए और आपके लिए सहायक है। हम व्यवस्था विवरण 13 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और ऐसा भविष्यवक्ता वा स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा, इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। ध्यान दीजिए, झूठा भविष्यवक्ता जो इसराइल को किसी और उपासना या धर्म की ओर प्रेरणा दे तो उसे पथरवाह करके मार दिया जाए। क्या यह अति निर्दयता है? क्या यह पाशविक है? मेरे मित्रों, झूठा भविष्यवक्ता कैंसर की तरह होता है और कैंसर की नाई ही उसका उन्मूलन कर देना चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। परमेश्वर एक महान वैद्य है और वह जानता है कि उसकी प्रजा का लाभ इसी में है कि उनके मध्य से कैंसर काट कर हटा दिया जाए। मेरे मित्रों, मनुष्य को झूठी उपासना और झूठे धर्म में प्रेरित करने वाले के बारे में यह परमेश्वर के विचार हैं। मित्रों, आज हम लोगों ने कलीसिया में गलत शिक्षा और अविश्वासियों को आने का मौका दे दिया है और यही कारण है कि कई स्थानों में आराधना की आजादी नहीं है, परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये नियम इसराइल की सुरक्षा के लिए बनाए थे। यदि कोई उन्हें परमेश्वर की आराधना से अलग ले जा रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को पथरवाह कर दिया जाए। कुछ दयालु मनुष्य कहेंगे कि यह निर्दयता की अति है, अर्थात बहुत अधिक बढ़ करके हम बातें कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर जानता था कि इन झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा इसराइल को मूर्ति पूजा या ईश्वर त्याग करवाना कैसा भयानक कार्य है। मेरे मित्रों, इतिहास से प्रकट है कि इसराइल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और उन्होंने ऐसा ही किया। यदि आप इसकी भीषणता देखना चाहें तो राजा आहाब और इजाबेल के बारे में पढ़ें। उन्होंने इसराइल को मूर्ति पूजा में लीन कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उत्तरी राज्य को दंड दिया और उन्हें दासत्व में भेज दिया और यह एक बहुत ही भयानक कार्य होता है। मेरे मित्रों, आज भी हम अपने प्रतिदिन के जीवन में इस प्रकार की बातों का सामना करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं और हम उसे नजरअंदाज करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हम भी उन्हीं कार्यों को करते हैं जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होता है। वह चाहता है कि हम उसकी उपासना करें, लेकिन हम उससे हट जाते हैं। आज मुझे और आपको भी एक सबक दिया गया है ताकि हम अपने जीवन को जांच करके देखें कि क्या मैं परमेश्वर की निकटता में आ रहा हूं, क्या मैं उसके वचन पर ध्यान देता हूं, क्या उसके अनुसार चलता हूं। यदि आज मैं और आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मेरे लिए और आपके लिए एक अवसर है कि हम प्रभु के पास लौट आएं। हम उस दंड को ना आने दें जो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए रखता है। वह चाहता है कि हम उससे बच जाएं। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं ये आशा करता हूँ कि आज के इस दिन में आप अवश्य ही अपने जीवन का एक सही निर्णय लेंगे और परमेश्वर के निकटता में आकर उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर आप सबको सहायता प्रदान करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
अपनी मर्जी।